नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूँ रविशंकर शर्मा। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए इतना तो तय है कि शिवसेना का एजेंडा हिंदुत्व वाला ही होगा, क्योंकि शिवसेना सरकार में रहने के बावजूद विपक्ष का काम करती रही, तो भला वह विकास की चीजों को कैसे दिखाएगी। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर सोनू कनौजिया जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। सोनू जी, सामना में आज शिवसेना ने यह लिखा है कि राम मंदिर बनाओ, नहीं तो लोकसभा चुनाव में जनता राम नाम सत्य कर देगी।
देखिए, शिवसेना के पास अब राम मंदिर के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि राम मंदिर के साथ साथ जो डेवलपमेंट का मुद्दा है वो तो बीजेपी के पास है। और शिवसेना की अगर बात करें तो पिछले 4 सालों में शिवसेना ने सिर्फ बीजेपी को कोसने का काम किया, इसके अलावा शिवसेना ने और कुछ नहीं किया। तो अगर जनता के सामने जाएगी तो शिवसेना क्या लेकर जाएगी, क्या कहेगी लोगों को कि हमने 4 सालों में आपके लिए ये किया है। तो शिवसेना अब राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, और आस्था का जो मुद्दा उठाकर आराम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। तो राम मंदिर का एक ऐसा मुद्दा है जो शिवसेना सोच रही है कि उसे आगे लेकर जाना चाहिए और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। शिवसेना ने 4 साल उनके पास थे, 4 साल का अच्छा खासा इस्तेमाल शिवसेना कर सकती थी, लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले 4 सालों में बीजेपी और शिवसेना के बीच में लड़ाई होती रही। शिवसेना का ये कहना है कि बीजेपी ने उन्हें उनको उनके मंत्रियों को काम करने नहीं दिया। शिवसेना के नेताओं का मंत्रियों का यह कहना था कि हमारे पास हमारा इस्तीफा हमारे जेब में है, हम कभी भी जो है इस्तीफा दे देंगे। तीसरा, सामना में हमने बार बार देखा है कि किस तरह से शिवसेना बीजेपी पर हमला बोलती रही है, तो दोनों की नीतियां नहीं साथ दिख रही थी। हाथ तो मिल गए लेकिन दोनों के दिल नहीं मिले इस पिछले 4 सालों में, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं इन दोनों के गठबंधन में देखने मिल रहा है। और शिवसेना ने मुझे लगता है कि पूरा वक्त इससे पूरी राजनीति में लगा दिया। अगर शिवसेना चाहती तो लोगों के साथ कांटेक्ट करती, जहां जहां उनके सांसद हैं वहां लोगों से कांटेक्ट करती, वहां अपनी जो जमीनी ताकत है वो उसे और मजबूत करती, लेकिन शिवसेना का इस तरह उस और काम होता हुआ नजर नहीं आया। शिवसेना में हमने पिछले 4 सालों में ये देखा कि शिवसेना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर हमला कर रही थी, शिवसेना डेवलपमेंट के मुद्दे पर कहीं थी ही नहीं। तो मुझे लगता है कि शिवसेना के पास अब यही एक मुद्दा रह गया है जिसके जरिए शिवसेना आने वाले लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है और ये कहना चाहती है कि राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया और हम आएंगे, हमको पूरी तरह से ताकत दो, हम राम मंदिर बनाएंगे।
इसके अलावा प्रवीण तोगड़िया भी ये कहते हैं कि हमने RSS इसलिए नहीं ज्वाइन किया था कि अब वह मुसलमानों की तरफदारी करे, उनके प्रति अपनी संवेदना रखे, क्योंकि जिस तौर पर हाल के दिनों में जो स्टेटमेंट आया है मोहन भागवत के, उन्होंने एक नरमी दिखाई है RSS के रूप में भी, तो उस पर प्रवीण तोगड़िया भी आक्रामक नजर आ रहे हैं, वह भी राम मंदिर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो राम मंदिर में लगता है इस मुद्दे पर बीजेपी को 2019 में पूरी तरह से घेरा ही जाने वाला है।
जाहिर सी बात है, देखिए राम मंदिर का एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी अभी से नहीं, मुझे लगता है 92 से शिवसेना लगातार ये मुद्दा लेकर आती रही है, तो शिवसेना माफ करिए बीजेपी ये मुद्दा लेकर चुनाव में जाती रही है। तो अब लगभग 20 साल हो चुके हैं, 20 साल से अब वोट मांग रहे हो और मंदिर बन ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके अगेंस्ट तो ये आपका जो मैनिफेस्टो का जो एक मुद्दा है वो तो आपके अगेंस्ट जाएगा ही। अब बीजेपी का ये कहना है कि वो मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये एक देखा जाए तो गले की हड्डी तो बीजेपी के बनते हुए नजर आ रही है। अब जो सहयोगी दल हैं और जो जैसे हम बात कर प्रवीण तोगड़िया की, तो इनके पास मौका मिल चुका है, मौका ये कि बीजेपी इतने सालों से कहते आ रही है लेकिन राम मंदिर के नाम पर चुप हो जा रही है, तो ये एक अच्छा खासा मौका मिल गया है और इस मौके को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, चाहे प्रवीण तोगड़िया हो, चाहे शिवसेना हो या फिर विपक्ष में कांग्रेस क्यों ना हो, ये सभी की सभी इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरना चाहते हैं। विपक्ष इस बात को लेकर घेरेगा, उसका कारण ये है कि ये बता सके कि झूठी प्रॉमिस की गई है। वहीं शिवसेना इसलिए घेर रही है राम मंदिर के मुद्दे पर कि शिवसेना अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सके आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ। प्रवीण तोगड़िया नाराज हैं, उनका ये कहना है कि हमने इतना साल दिया और राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, तो इतने साल से कई लोगों ने RSS में काम किया और राम मंदिर बनाने का आश्वासन दिया गया था, तो राम मंदिर तो बना नहीं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका और बहुत ही अच्छा इशू बैठे बैठाए लोकसभा चुनाव के पहले इन सभी लोगों को मिल चुका है और ये बीजेपी पर हमला करने के लिए एक अच्छा खासा मुद्दा भी है। और दूसरी बात ये कि बीजेपी भी बैकफुट पर है, बीजेपी ने भी समझना चाहिए था कि उसी मुद्दों को मैनिफेस्टो में रखा जाए जो पूरा कर सके। वो राम मंदिर के मामले पर बीजेपी हमेशा से राजनीति करती आई है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी इसी तरह से राजनीति बीजेपी की तरफ से किया भी जाएगा। अब राम मंदिर बनेगा या नहीं ये तो अभी कोर्ट पर डिसाइड है, डिपेंड है कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। आने वाले दिनों में कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होनी है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट जल्द ही अपना फैसला भी सुना देगा। तो अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होता है, लेकिन हाँ बैठे बैठे मुद्दा तो अच्छा खासा मिल गया है जिसको लेकर सहयोगी पार्टी के अलावा पुराने दोस्त और साथ ही साथ विपक्ष ये बीजेपी पर हमला कर रहा है।
सुनो जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। शिवसेना भले ही अपने आप को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने का दावा करे लेकिन वोट तो उसे महाराष्ट्र से ही लेना है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने इन 4.5 साल 5 साल के अपने कार्यकाल के बीच में बीजेपी ने कभी भी अपना जो चेहरा रखा है वो विकास वाला ही रखा है। लोगों के बीच में उन्होंने डेवलपमेंट की बातें रखी है, हालांकि जो उनकी बी टीम होती होगी वह हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करेगी। क्या लगता है शिवसेना को महाराष्ट्र में हिंदुत्व के एजेंडे पर वोट मिलेगा कि डेवलपमेंट के एजेंडे पर वोट उसको मिलना चाहिए?
देखिए, मुझे तो लगता है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने क्या काम किया इस बात पर वोट मांगना चाहिए। ये धार्मिक मुद्दे उठाकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे लगता नहीं है कि आपको वोट मांगने जाना चाहिए। एक अच्छी राजनीतिक पार्टी बनकर अगर आपको भरना है तो मुझे लगता है कि आपको एक क्लीन पॉलिटिक्स करना चाहिए, लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये इमोशनल मुद्दे हैं, ये इन मुद्दों का सही टाइम पे ये इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये मुद्दा लोकसभा चुनाव के पहले इस्तेमाल करना था, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया। लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को ये समझना चाहिए कि अगर कोई आपको इस तरह से ऐसे मुद्दों पर बरगलाने की कोशिश कर रहा है तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए और उस शख्स के, कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, शिवसेना का हो, उस कैंडिडेट को वोट करना चाहिए जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और वो जो डेवलपमेंट के पक्ष में है और डेवलपमेंट के लिए काम करता हो, जो सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब किसी एक जात और धर्म को लेकर बांटने की कोशिश करता है, उस कैंडिडेट को वोट ना दे बल्कि ऐसे कैंडिडेट को चुने जो आपके लिए डेवलपमेंट का काम कर रहा है। अब देखिए, महाराष्ट्र में बात करें, महाराष्ट्र एक अच्छा खासा प्रगतिशील स्टेट है लेकिन इसके भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। मुंबई को ही देख लो, मुंबई बढ़ती जा रही है लेकिन मुंबई में ना तो रास्ते ठीक हैं, ना तो ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पर ठीक तरह से हो पाया है। यहाँ पर गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। मुंबई के बाहर निकल जाए, थाने, रायगढ़, कल्याण, अलग अलग स्टेट, वर्धा में चले जाए और भी नागपुर में चले जाए, तो बेसिक मुद्दे आज तक बदले ही नहीं है। रोडों की हालत उस तरह की है, जो वाटर वेस्टेज है वो उस तरह का प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र में कई हिस्सों में तो सूखा पड़ चुका है। इन सब मुद्दे पर कोई नहीं बोलता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ जात और धर्म और राम मंदिर के नाम पर यहाँ पर राजनीति होती है। मुझे लगता है कि इन मुद्दों से हटकर भी कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ना चाहिए और लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, चाहे वो गुजरात का मामला हो, गुजरात के मामले को लेकर लड़की के इंसाफ के बारे में कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी, और राहुल गांधी भी ट्वीट करने कर दिया कि बेरोजगारी, और मतलब मुद्दा कहाँ से कहां लेकर चला जाता है, मेन मुद्दे पर कोई नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि मुद्दे से भटकने का काम यहां पर कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। तो शिवसेना अगर चुनाव लड़ना चाहती है, देखिए चुनाव पार्टी के एमएस से राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन आम नागरिक महाराष्ट्र के और मुंबई के एक वोटर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे लिए डेवलपमेंट का मुद्दा बहुत बड़ा है।
चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो 2019 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इससे पहले 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। आप क्या जातीयगत समीकरण के आधार पर वोट करेंगे या आप धार्मिक समीकरण के आधार पर वोट करेंगे या फिर आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट करना चाहते हैं? तीनों चॉइस आपकी है और आपको इसी के आधार पर आप वोट कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का अगर जो मुद्दा होगा वह आने वाले भविष्य को और निखार सकता है। जो भी हो, फैसला आपके हाथों में है। फिलहाल के लिए बने रहिए SW न्यूज़ के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।